بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت ایوم اس کے انواع سے کریں گے۔ آج آپ پوتر قرآن مجید کے سورہ حجرات کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی تلاوت اور انواع سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا صدق
اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو اتین کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہے ایمان لانے والو، بہت سی سوچوں سے بچو کہ کچھ سوچیں پاپ ہوتی ہیں، اور ٹوہ میں مت رہو، اور نہ تم میں سے کوئی پیٹھ پیچھے کسی کی نندا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا ماس کھائے؟ تمہیں سوئم اس بات سے گھن آئے گی، اور ایشور سے ڈرتے رہو، نسندیہ ایشور توبہ سویکار کرنے والا اور دیاوان ہے۔ ہے لوگو، ہم نے تمہیں ایک پرش و استری سے پیدا کیا، اور تمہاری بہت سی جاتیاں اور ونش بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، निसंदेह ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारे बीच सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो है जो ईश्वर से सबसे अधिक भय रखता है। निसंदेह ईश्वर अत्यंत ज्ञानी और जानकार है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की रात्रिकालीन सभा आप शॉर्ट वेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। श्रोताओं, व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098-9035065492। श्रोताओ, आज मंगलवार है, फरवरीदिन की 9, शाबान की 26 और मार्च की 29 तारीख। हमारी समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी सेवा में प्रस्तुत किए जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा और इसके बाद नवरोज के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। और श्रोताओ, इस विशेष कार्यक्रम के बाद सभा का अंतिम कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा, कुरानी किस्से। तो श्रोताओ, यह है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपसे कुछ क्षणों बाद आप सुनेंगे विश्व समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओ, अब मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास से सुनिए विश्व समाचार।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान ने परमाणु तकनीक के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हुए गैस लीकेज का पता लगाने वाला सिस्टम डेवलप किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा कि वियना वार्ता संवेदनशील चरण में पहुंच गई है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इराक में आयतुल्ला सिस्तानी का अपमान किए जाने की घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश देखा गया। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल करते हुए परमाणु तकनीक से एक सिस्टम डेवलप कर लिया है जो परमाणु संयंत्र के ईंधन में गैस लीकेज का पता लगाने में सक्षम है। लीकेज का पता लगाने और सेफ्टी को सुनिश्चित करने में इस कामयाबी का अहम रोल होगा। इस सिस्टम को तेहरान के अनुसंधान परमाणु रिएक्टर में लगाया गया है। इससे पहले रिएक्टर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए संयंत्र से बाहर प्रयोगशाला में पुर्जों का टेस्ट किया जाता था, मगर अब यह सिस्टम संयंत्र के अंदर ईंधन का इंस्पेक्शन करता रहेगा और लीकेज होने की स्थिति में उसकी सूचना देगा। ये सफलता नॉलेज बेस्ड कंपनियों और ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान नागरिक लक्ष्यों के लिए परमाणु तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता है और इसी मकसद से इस तकनीक के मैदान में तेजी से प्रगति कर रहा है।
यूरोपीय आयोग की प्रवक्ता ने कहा है कि वियना वार्ता संवेदनशील चरण में पहुंच गई है। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता नबीला मिसराली ने कहा कि ईरान के परमाणु समझौते पर अमल के हवाले से वियना वार्ता अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। पिछले दिनों में यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रभारी जोसेफ बोरेल ने भी अपने बयान में ईरान के विरुद्ध प्रतिबंधों को खत्म करने की ओर इशारा करते हुए कहा था कि परमाणु समझौते से निकलकर ट्रंप प्रशासन ने बड़ी गलती की। इससे पहले इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सूफिया विल्जियम्स के साथ होने वाली टेलीफोनी बातचीत में वियना वार्ता में होने वाली प्रगति की ओर संकेत करते हुए कहा था कि बाकी बचे एक या दो विषय के हल के लिए अमेरिका को फैसला करने की जरूरत है और उसका अनुसरण यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि द्वारा की जा रही है। इस्लामी गणतंत्र ईरान ने एक जिम्मेदार देश के रूप में बारंबार कहा है कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहा है और वाशिंगटन को प्रतिबंधों की समाप्ति के समझौते की ओर वापस आना चाहिए और अमेरिका के लिए जरूरी है कि वे अपने वचनों का ख्याल रखे। ईरान का ख्याल है कि अमरीकी प्रतिबंधों की समाप्ति केवल कागज पर नहीं होनी चाहिए बल्कि व्यवहार में उसे दिखाना जरूरी है।
तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा है कि विदेशी निवेश के लिए हालात अनुकूल हैं और ईरान खवाफ हेरात रेलवे लाइन को बदख्शां और फिर वहां से चीन तक पहुंचाएगा। तालिबान के सूचना व संस्कृति मंत्रालय के उपमंत्री और प्रवक्ता मुजाहिद का कहना था कि ईरान ने रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट को पूरा करने का वादा किया है, जबकि ईरान को अफगानिस्तान में खदानों की परियोजनाओं पर काम करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा कि नया साल अफगानिस्तान के लिए बड़ी उपलब्धियों वाला साल होगा क्योंकि तालिबान सरकार ने हालात को विदेशी निवेश के लिए बहुत अनुकूल बना दिया है। उन्होंने कहा कि हमने अफगानिस्तान के हितों को मद्देनजर रखते हुए विदेशी निवेश के कानूनों और नियमों को बिल्कुल पारदर्शी बना दिया है। मुजाहिद ने कहा कि हमारी योजना के अनुसार काम हुआ तो नए साल में विदेशी निवेश के नतीजे में आर्थिक संकट दूर होगा।
भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और विपक्षी दलों से मांग की है कि वे इस मुद्दे पर विमर्श के लिए एकजुट हो जाएं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए देश भर में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर बैठक के लिए बुलाया है। ममता बनर्जी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर भगवा पार्टी का मुकाबला करने के लिए एकजुट होने को कहा है। उनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों को राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बंगाल सीएम ने चिट्ठी में लिखा है कि प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता जैसी केंद्रीय एजेंसियां, आयोग और आयकर विभाग का इस्तेमाल देश भर में राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने, उन्हें परेशान करने और उन्हें घेरने के लिए किया जा रहा है। इसलिए हम सभी को मिलकर बीजेपी को केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने से रोकना चाहिए। जब चुनाव नजदीक होते हैं तो केंद्रीय एजेंसियां हरकत में आ जाती हैं।
इराक में लोकमान्य वरिष्ठ धर्मगुरु आयतुल्लाह अल-उज़्मा सीस्तानी का एक कुर्द नेता की ओर से अनादर किए जाने के बाद देश में जनाक्रोश फूट पड़ा, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों ने भी प्रतिक्रिया जताई है। कुर्दिस्तान डेमोक्रेट पार्टी के समर्थक कुर्द नेता नायफ अल कुर्दिस्तानी ने रविवार को आयतुल्लाह अल-उज़्मा सीस्तानी के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट कर दिया, जिसके बाद पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। आक्रोशित लोगों ने बगदाद में कुर्दिस्तान डेमोक्रेट पार्टी के कार्यालय को आग लगा दी। हालात खराब होने के बाद नायफ अल कुर्दिस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुर्दिस्तान डेमोक्रेट पार्टी ने कहा है कि नायफ के ट्वीट से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और न ही अब नायफ का इस पार्टी से कोई संबंध है। इराक के दारुल फतवा के प्रवक्ता आमिर अल बयाती ने कुर्दिस्तानी की निंदा करते हुए कहा कि धार्मिक नेतृत्व का पूरा देश सम्मान करता है और यह घटना जानबूझकर की गई गुस्ताखी है जिसकी हम निंदा करते हैं। कुर्दिस्तान पेट्रियाटिक यूनियन के नेता बुरहान शेख रऊफ ने कहा कि धार्मिक हस्तियों का अपमान किए जाने की हम कड़ी निंदा करते हैं। इराक के शिया और सुन्नी दोनों समुदायों के नेताओं ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और दोषी व्यक्ति को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की।
रूस ने पिछले दिन के दौरान यूक्रेन के 5 युद्धक विमानों को मार गिराने की खबर दी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि देश की सैन्य टुकड़ियों ने पिछले दिन के दौरान यूक्रेन के 19 ड्रोन विमानों और 5 युद्धक विमानों को मार गिराया है। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को ऐलान किया कि पिछले दिनों के दौरान उसके सैनिकों ने यूक्रेन की सेना के 36 ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि 19 ड्रोन विमानों को मार गिराया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के बयान में आया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान यूक्रेन के 5 युद्धक विमानों को तबाह कर दिया गया, जिनमें 4 जेट सुखोई सू 24 और 1 सुखोई सू 27 शामिल है।
ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب اردوغان نے استانبول میں یوکرین اور روس کے بیچ ہو رہی وارتا کے بارے میں کہا کہ اس کا نتیجہ نکلنا ضروری ہے. وارتا باسفورس اسٹریٹ کے کنارے ایتیحاسک ڈولما باشے محل میں ہو رہی ہے. وارتا شروع ہونے سے پہلے اپنی ادگھاٹن ٹپڑی میں اردوغان نے کہا کہ یوکرین کے راشٹرپتی زیلنسکی اور روسی راشٹرپتی پوتین ان کے اچھے دوست ہیں, اور یہ بات چیت آگے بڑھی تو دونوں دیشوں کے راشٹرپتیوں کی ملاقات کا راستہ بھی صاف ہو سکتا ہے. اردوغان نے کہا کہ ہم اس شکھر وارتا کی بھی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہیں. ترک راشٹرپتی نے کہا کہ یوکرین اور روس دونوں کی چنتائیں درست ہیں, لیکن ہم اس بندو پر پہنچ چکے ہیں جہاں وارتا کا ٹھوس نتیجہ نکلنا ضروری ہے. اردوغان نے کہا کہ وارتا پر کئی چیزیں نربھر ہیں اور نیائےپورن شانتی میں کوئی بھی پکش پراجت نہیں مانا جاتا, جبکہ وواد کا جاری رہنا کسی کے بھی ہت میں نہیں ہے. انہوں نے تتکال سنگھرش ویرام کی مانگ کرتے ہوئے کہا کہ اس تراسدی کو روکنے کا فیصلہ دونوں دیشوں کو کرنا ہوگا. سوچنا ہے کہ یہ وارتا سماپت ہو چکی ہے اور وارتا سے اچھے سنکیت سامنے آئے ہیں.
یمن کے انصار اللہ آندولن کے مہا سچیو سید عبد الملک الحوثی نے سعودی عرب کے نیتتو والے گٹھ بندھن سے کہا ہے کہ وہ شانتی کا موقع نہ گنوائیں اور یمن کی ناکہ بندی تتھا یمنی علاقوں پر قبضہ سماپت کرے. پویتر مہینے رمضان کے آگمن کے اپلکش میں بھاشن دیتے ہوئے عبد الملک حوثی نے کہا کہ ہم حملوں اور ناکہ بندی کا مقابلہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ناکہ بندی کا جاری رہنا ہمیں برداشت نہیں ہے. حملہ وروں کے پاس ہمارے جوابی حملوں سے بچنے اور سنکٹ سے باہر نکلنے کا یہی راستہ ہے کہ یمن پر حملہ روکیں, یمن کی ناکہ بندی اور یمنی علاقوں پر قبضہ ختم کریں. انہوں نے چیتاونی دی کہ اگر آپ نے یہ موقع گنوا دیا تو آپ کو پچھتانا پڑے گا.
اویدھ ادھکرت فلسطین کے نقب علاقے میں اسرائیل اور امریکہ کے ودیش منتریوں کے ساتھ چار عرب دیشوں کے منتریوں کی بیٹھک سے عرب و مسلم علاقوں میں بھاری آکروش پیدا ہو گیا ہے. بحرین کے الوفاق پارٹی نے ایک بیان جاری کر کے نقب بیٹھک میں بحرین کے ودیش منتری کی شرکت کی کڑے شبدوں میں نندا کی. پارٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ اس سمے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کھیتر کے دیشوں کی شانتی و استھرتا پر حملے کی شرمناک کوشش ہے, اور یہ ملاقات علاقے کے راشٹروں کی اچھا اور مرضی کے خلاف ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کیول نام کے مسلمان اور عرب ہیں, دراصل وہ اسرائیلیوں کی گود میں جا بیٹھے ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطین سنکٹ کے بارے میں اسلامی اور عرب راشٹروں کا فیصلہ صاف ہے اور اسرائیل اپنی سازشوں سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکا, اس لیے اب وہ اپنی حفاظت کی فکر میں لگ گیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ بیٹھک ان لکشوں کو پورا کرنے کے لیے ہے جنہیں اتیت میں اپنی کوششوں کے باوجود اسرائیل پورا نہیں کر سکا. بحرین کے بزرگ دھرم گرو آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے بھی ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ اگر اسلامی جگت ان سازشوں پر خاموش رہتا ہے تو اس کی دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی, اس لیے اسے چاہیے کہ پرتیرودھ کر کے اس سازش کو ناکام بنائے. اس بیٹھک میں جارڈن, مصر, بحرین اور امارات نے حصہ لیا ہے جس پر عرب جگت اور اسلامی جگت میں آکروش ہے. بیٹھک کا آیوجن اسرائیل کی اور سے کیا گیا جس میں امریکی ودیش منتری بھی موجود تھے. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے.
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز.
راجنیتک چرچا.
شوتو راجنیتک چرچا کے دینک کارکرم میں محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے. شوتاؤ, ایران نے ایک بار پھر فلسطینی راشٹر کی آکانکھاؤں کے سمرتھن پر بل دیا ہے. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में जानी शासन के अलावा चार अरब देशों की होने वाली बैठक की भर्त्सना की और बल देकर कहा कि अतिग्रहणकारी और आतंकवादी जानियों के साथ संबंध सामान्य बनाने हेतु हर प्रकार का प्रयास फिलिस्तीनी राष्ट्र की पीठ में छुरा घोंपना और बच्चों के हत्यारे जानी शासन को उपहार देना है। यूक्रेन का दावा है कि रूस यूक्रेन का विभाजन करना चाहता है। यूक्रेन की खुफिया संस्था के प्रमुख ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक इस देश को दो हिस्सों में बांटने का प्रयास किया है। क्रिलो बोडानोव ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तरी और दक्षिणी कोरिया जैसी स्थिति यूक्रेन में उत्पन्न करना चाहते हैं। दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें माइक्रो लघु और मध्यम उद्योगों में प्रतिस्पर्धा और विकास की संभावनाओं की समीक्षा की जा रही है।
फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेगमेंट।
श्रोताओं, ईरान ने एक बार फिर फिलिस्तीनी राष्ट्र की आकांक्षाओं के समर्थन पर बल दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में जानी शासन के अलावा चार अरब देशों की होने वाली बैठक की भर्त्सना की और बल देकर कहा कि अतिग्रहणकारी और आतंकवादी जानियों के साथ संबंध सामान्य बनाने हेतु हर प्रकार का प्रयास फिलिस्तीनी राष्ट्र की पीठ में छुरा घोंपना और बच्चों के हत्यारे जानी शासन को उपहार देना है। समीक्षा पेश करें साथी अख्तर अब्बास।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय ने अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में जानी शासन के अलावा चार अरब देशों की होने वाली बैठक की भर्त्सना की और बल देकर कहा कि अतिग्रहणकारी और आतंकवादी ज़ायोनियों के साथ संबंध सामान्य बनाने हेतु हर प्रकार का प्रयास फिलिस्तीनी राष्ट्र की पीठ में छुरा घोंपना और बच्चों के हत्यारे ज़ायोनी शासन को उपहार देना है। अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के नकब क्षेत्र में रविवार को एक बैठक हुई थी, जिसमें मिस्र, संयुक्त अरब इमारात, बहरीन और मोरक्को के अलावा अमरीका और ज़ायोनी शासन के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था। प्राप्त समाचारों के अनुसार ईरान यूक्रेन संकट और ज़ायोनी शासन के साथ अरब देशों के संबंधों को सामान्य बनाना इस बैठक के मुख्य विषय थे। फिलिस्तीनी राष्ट्र की आकांक्षाओं के प्रति विदित में प्रतिबद्ध होने के बावजूद संयुक्त अरब इमारात, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने दिसंबर 2020 तक अवैध ज़ायोनी शासन के साथ संबंधों को सामान्य कर लिया। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों सहित दुनिया के बहुत से देशों ने इसराइल को मान्यता दी है, परंतु क्षेत्र के अधिकांश देशों ने उसे मान्यता नहीं दी है, जिसके कारण उसे अपनी वैधता के संकट का सामना है। क्षेत्र के अधिकांश देश जो इसराइल को मान्यता नहीं दे रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन देशों के लोग इसराइल के मानवता विरोधी कृत्यों से भली भांत अवगत हैं और इन देशों, विशेषकर अरब देशों की तानाशाही सरकारों पर इसराइल से संबंधों को सामान्य न करने के लिए जनमानस का दबाव है, वरना कुछ अरब देश बहुत पहले ही इसराइल को मान्यता देकर उससे संबंध स्थापित कर चुके होते। रोचक बात यह है कि 70 साल से अधिक का समय बीत रहा है और इसराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ अत्याचार का बाजार गर्म कर रखा है। इसराइल 40 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से निकाल चुका है, जो वर्षों से दूसरे देशों में बहुत ही दयनीय दशा में शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसराइल ने जिन फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से निकाला है, उनकी जमीनों, बागों और मकानों आदि को ज़ायोनियों को दे दिया है। यही नहीं, इसराइल अब फिलिस्तीनियों को अपनी मातृभूमि में वापसी की भी इजाज़त नहीं दे रहा है। 70 साल से अधिक की अवधि में ज़ायोनी शासन लाखों फिलिस्तीनियों को शहीद, घायल और बेघर कर चुका है, पर अमेरिका सहित मानवाधिकारों की रक्षा का राग अलापने वाले अर्थपूर्ण मौन धारण किए हुए हैं और इसराइल किसी प्रकार की चिंता के बिना अनवरत मानवाधिकारों का हनन जारी रखे हुए है। यही नहीं, इसराइल फिलिस्तीनियों के सामने उनके मकानों को ध्वस्त करता है और उनकी हड़पी हुई जमीनों पर ज़ायोनी कॉलोनियों का निर्माण कर रहा है। रोचक बात यह है कि राष्ट्रसंघ भी कह चुका है कि अतिग्रहित भूमियों पर ज़ायोनी कॉलोनियों का निर्माण गैर कानूनी है, परंतु इसराइल ने न केवल एक दिन के लिए कॉलोनियों का निर्माण नहीं रोका, बल्कि यथावत ज़ायोनी कॉलोनियों का निर्माण जारी रखे हुए है। बहरहाल, रविवार को अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के नकब क्षेत्र में जो बैठक हुई, उसका लक्ष्य इसराइल द्वारा फिलिस्तीन में किए जा रहे अपराधों पर पर्दा डालना, आम जनमत का ध्यान भटकाना और इसराइल के साथ अरब देशों के संबंधों को सामान्य बनाना था।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش۔ کاریکرم راجنیتک چرچا۔
یوکرین کا دعویٰ ہے کہ روس یوکرین کا وبھاجن کرنا چاہتا ہے۔ یوکرین کی خفیہ سنستھا کے پرمکھ نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین پر حملے کے بعد سے اب تک اس دیش کو دو حصوں میں بانٹنے کا پریاس کیا ہے۔ کرلو بوڈانوف نے کہا کہ روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین اتری اور دکشنی کوریا جیسی استھتی یوکرین میں اتپن کرنا چاہتے ہیں۔ سمیکشا پیش کریں ساتھ ہی رویش زیدی۔
یوکرین کا دعویٰ ہے کہ روس یوکرین کا وبھاجن کرنا چاہتا ہے۔ یوکرین کی خفیہ سنستھا کے پرمکھ نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین پر حملے کے بعد سے اب تک اس دیش کو دو حصوں میں بانٹنے کا پریاس کیا ہے۔ کرلو بوڈانوف نے کہا ہے کہ راشٹرپتی ولادیمیر پوتین اتری اور دکشنی کوریا جیسی استھتی یوکرین میں اتپن کرنا چاہتے ہیں۔ دویتیہ وشو یدھ کے بعد کوریا دو دیشوں میں وبھاجت ہو گیا، ایک اتری اور دوسرا دکشنی کوریا۔ اتری کوریا کو روس کا سمرتھن پراپت ہے جبکہ دکشن کوریا کو امریکہ کا سمرتھن پراپت ہے۔ کرلو بوڈانوف نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ اس سمے پوتین کی پراتھمکتا یوکرین کے پوروی اور دکشنی بھاگ پر نینترن کر لینا ہے، اور اس کے بعد پوتین ایک سیما ریکھا انکت کر دیں گے جو پوروی اور دکشنی یوکرین کے دیش کے دوسرے حصوں سے الگ ہونے کا کارن بنے گا۔ یوکرین پر روسی حملہ آرم ہوئے ایک مہینے سے ادھک کا سمے گزر چکا ہے اور دونوں پکشوں کو اب تک اس یدھ میں اربوں ڈالر کی شتی پہنچ چکی ہے۔ بہت سے جانکار حلقوں کا ماننا ہے کہ یوکرین واسطو میں امریکہ اور نیٹو کی چھاؤنی میں پریورتت ہو گیا تھا، اور اس چیز کو روس اپنی راشٹریہ سرکشا کے لیے گمبھیر خطرہ سمجھتا تھا، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ خطرہ اس کے دروازے تک آ چکا ہے۔ اسی پرکار ان حلقوں کا ماننا ہے کہ یوکرین میں جو تباہی ہوئی ہے اور جو ہو رہی ہے وہ سب امریکہ، یورپی اور پشچیمی دیشوں اور نیٹو کے کریا کلاپوں کا پرینام ہے۔ جانکار حلقے یوکرین کے راشٹرپتی زیلنسکی کے حالیہ اس اعلان کو یدھ ویرام کی دشا میں ایک مہتوپورن قدم کے روپ میں دیکھ رہے ہیں، کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ نیٹو کی سدستا نہیں چاہتے۔
दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योगों में प्रतिस्पर्धा और विकास की संभावनाओं की समीक्षा की जा रही है।
Forward to the next segment.
दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योगों में प्रतिस्पर्धा और विकास की संभावनाओं की समीक्षा की जा रही है। इस सम्मेलन में ईरान, भारत और उज्बेकिस्तान सहित कुछ देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बुद्धिजीवियों, उद्योगपतियों और नीति निर्धारकों सहित अनेक व्यापारियों की उपस्थिति में इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाषणकर्ताओं ने माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योगों को देशों की अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया और इसके उत्थान के लिए पारस्परिक सहयोग की संभावनाएं तलाश करने पर बल दिया। भारत के माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योग के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि MSME हमारी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है और ये उद्योग देश के आर्थिक विकास और निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
MSME इज द ग्रोथ इंजन।
उन्होंने कहा कि भारत की वर्तमान सरकार MSME पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है और इसे प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने और इसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। ईरान के सहकारी, श्रम एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय के उपमंत्री डॉक्टर गुलाम हुसैन हुसैनिया ने कहा कि कोरोना वायरस के संकट के कारण सबसे अधिक क्षति लघु एवं मध्यम उद्योग को पहुंची है, अतः कोरोना के बाद ये आवश्यक है कि इन उद्योगों के विकास के लिए उचित प्रौद्योगिकी और दूसरे देशों के अनुभवों से इस संदर्भ में लाभ उठाया जाए।
پاندمی کرونا در دنیا بسیاری از کسب و کارها تحت تاثیر شدیدی قرار گرفت.
ان کے انوسار ایران اور بھارت کے پاس مائکرو لگھو اور مدھیم ادیوگوں کے مہتوپورن انوبھو ہیں۔ اس انتراشٹریہ سمیلن کا آیوجن کرنے والے انٹرپرینور شپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے مہا ندیشک سنیل شکلا نے اس کھیتر میں ایران اور بھارت کے سہیوگ کا اُلیکھ کرتے ہوئے کہا،
پچھلے 15 ورشوں سے میری سنستھا ای ڈی آئی آئی اسلامک ریپبلک آف ایران کے ساتھ کاریہ کر رہی ہے، اور جتنا ہم نے ان کو کنٹریبیوٹ کیا ہے اتنا ہی ہم نے سیکھا بھی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس جو اسکل ٹیکنیکل اسکلس میں کافی ان کے پاس ریسورسز ہیں، ہمارے پاس انٹرپرینورشپ۔
اس سمیلن کے سنیوجک امیت کمار نے اس سمیلن کے ادیشے پر پرکاش ڈالتے ہوئے کہا،
بھارت کی جو ایم ایس ایم ایز ہیں، جو مائکرو اسمال انٹرپرائزز ہیں، ان کو یہ پتا ہو کہ دوسرے دیشوں میں ٹیکنیکی میں کیا ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی میں کیا ہو رہا ہے، اور جو دوسرے دیش اچھا کر رہے ہیں ان کے جو نالج کو ہم اپنی ایس ایم ایز کو بتانا چاہتے ہیں۔
یہ سمیلن کل بھی جاری رہے گا جس میں سہیوگ کی سمبھاونائیں تلاش کی جائیں گی۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شوتاؤ، ہماری سبھا کا انتیم کاریکرم ہوگا قرآن قصے، پر اس سے پہلے عید نوروز کے سمبندھ میں آپ سنیے ہمارا وشیش کاریکرم۔
दोस्तों, नवरोज पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम नवरोज के जश्न में महिलाओं की भूमिका के विषय पर चर्चा करेंगे। स्वाति और सैयद में साम का सलाम स्वीकार कीजिए।
माँ बहुत ही शौक और उत्साह के साथ लाल रंग का कपड़ा बिछा रही थी اور کھڑکیوں سے چھن چھن کر آنے والی منموہک دھوپ لال رنگ کے کپڑے پر اپنی سندرتا کی کہانی لکھ رہی ہے۔ گیہوں کی رنگ برنگی بالیوں اور ڈیفوڈل کے گلدستوں نے گھر کے ماحول کو مہکا دیا ہے۔ ماں میں ایک الگ ہی طرح کا جذبہ اور شوق ہے۔ انہوں نے پہلے لال سیب کو دھویا، لہسن کو صاف کیا، گیہوں کی بالیوں سے بنے وشیش حلوے، سماق اور سکوں کو تیار کیا اور انہیں ایک تھالی میں سجا کر سندر ڈھنگ سے رکھ دیا۔
ان کے من پر ایک عجیب سی شانتی اور چہرے پر الگ طرح کی چمک ہے۔ وہ شانت من سے دسترخوان کے کنارے بیٹھی آئینے اور پوتر قرآن کو نہار رہی ہیں۔ پوتر قرآن اور آئینہ بھی دسترخوان کی سندرتا میں چار چاند لگا رہا ہے۔ دسترخوان پر آئینہ ہے اور لکڑی کے بنے ریحل پر قرآن رکھا ہوا ہے۔ دسترخوان کے دونوں طرف شمعدان رکھے ہوئے ہیں۔ ڈیفوڈل کے گلدستوں اور گیہوں کی بالیوں کو بہت ہی سندر انداز میں رکھا گیا ہے۔
اس کے بعد ماں ہفتسین کا پیالہ لاتی ہیں اور اسے بہت ہی سندر ڈھنگ سے آئینے اور پوتر قرآن کے پاس رکھ دیتی ہیں۔ میں بھی دوڑ دوڑ کر دسترخوان پر چنے جانے والے سامان لا رہا تھا۔ اس دوران میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ سرکہ، سمنو ارتھات گیہوں کا وشیش حلوہ، سیر یعنی لہسن، سنجد یعنی بیر اور کچھ سنہرے رنگ کے سکے ماں اپنے ہاتھوں سے دسترخوان پر رکھتی ہیں۔ اب سبزہ یعنی ہرے پودے کا نمبر آتا ہے۔
ہرے پودے کو ماں نے گیہوں کے دانوں سے تیار کیا ہے اور اسے ہفسین دسترخوان کے بیچوں بیچ میں رکھا ہے۔ اس کے بعد رنگ برنگی مچھلیاں ہفسین دسترخوان میں چار چاند لگا دیتی ہیں۔ جی ہاں، آئینے سے چھن کر پوتر قرآن کی نکلتی تصویر اور ہرے پودے میں ماترتو کا پرتیک پوری طرح سے نظر آتا ہے۔ دسترخوان پر चुनी हुई चीजें और उसके किनारे अपने परिवार के सदस्यों के दमकते चेहरे को देखकर उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। वे मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखती हैं और यह खुशी उसके हर्षोल्लास को उजागर करती है।
पुराने जमाने से एक कहानी मशहूर है कि प्राचीन काल में एक वृद्धा एक छोटे से घर में अकेले रहा करती थी। उसके घर का आंगन फलों के वृक्षों और रंग बिरंगे फूलों पौधों से भरा हुआ था। उस वृद्धा की हार्दिक इच्छा थी कि वो अम्मू नौरोज को देखे, इसलिए वो प्रतिवर्ष वसंत ऋतु के आगमन से पूर्व अपने पूरे घर को साफ सुथरा करती थी। वो नए नए कपड़े पहनकर अपने घर में हफ्तीन नामक दस्तरखान बिछाती थी। वो इस दस्तरखान के किनारे बैठकर अम्मू नौरोज के आने की प्रतीक्षा किया करती थी, किंतु होता यह था कि वो प्रतीक्षा करते करते सो जाती थी। जब वो नींद से उठती थी तो देखती थी कि अम्मू आए और उन्होंने मिठाइयाँ खाई, चाय पी और चले गए। अम्मू नौरोज प्रतिवर्ष बूढ़ी महिला के दस्तरखान पर यादगार के रूप में फूल छोड़ जाया करते थे, जिससे उसका घर कलियों और फूलों से भर जाया करता था। इस प्रकार अम्मू नौरोज को देखने के लिए बुढ़िया को एक अन्य वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी।
कहानी कहने वाले यही बताते हैं कि वह बूढ़ी महिला अभी तक अम्मू नौरोज को देखने में सफल नहीं हुई है, किंतु ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि अम्मू नौरोज प्रतिवर्ष निर्धारित समय पर आते हैं, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों, और उस फूल को देखते हैं और उसकी सुगंध का आभास करते हैं जो उन्होंने हर पेड़ की शाखा पर रखे हैं। अम्मू नौरोज विभूतियां देने वाले और अपने साथ प्रसन्नता का उपहार लाने वालों का प्रतीक है। बूढ़ी महिला उस प्राचीन संसार और भूमि का प्रतीक है जो बसंत ऋतु के आगमन से पुनर्जीवित हो जाती है और जीवन के रंग में रंग जाती है। इस कहानी के अम्मू नौरोज सदैव यात्री हैं और वे यात्रा पर जाना चाहते हैं।
ईरानी सभ्यता और संस्कृति में महिलाएं प्रेम और स्नेह का प्रतीक हैं। वो अपना निष्ठापूर्ण प्रेम, मोहब्बत और स्नेह घर के बगीचे में बिखेर देती है और घर के माहौल को सुंदर और दिलरुबा बना देती है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि जब महिला मुस्कुराती है तो मानो घर की ईंट ईंट उसके साथ मुस्कुराने लगती है। घर की खुशियां माँ और घर की मालिकन की खुशी में निहित है। ईश्वर ने महिलाओं को ऐसा ही बनाया है। उसने महिला को फूल की तरह बनाया है जो पहाड़ों की तरह मजबूत, पानी की तरह नर्म और मोहब्बत से भरी हुई होती है।
पवित्र कुरान में ईश्वर ने महिला को परिवार के सुख व शांति का कारण बताया है और विवाह को इस शांति तक पहुंचने की वजह करार दी है। सूरह रोम की आयत संख्या 21 में आया है कि उसकी निशानियों में से एक यह भी है कि उसने तुम्हारा जोड़ा तुम ही में से पैदा किया है ताकि तुम्हें उससे सुकून हासिल हो और फिर तुम्हारे बीच मोहब्बत और कृपा व दया करार दी ताकि इसमें बुद्धिमान लोगों के लिए बहुत सी निशानियां पाई जाती है। यह आयत बताती है कि ईश्वर ने विवाह को पवित्र बंधन करार दिया है और उसे महिला और पुरुष दोनों के लिए विशेष शांति का कारण करार दिया है।
परिवार में शांति और उत्साह का माहौल पैदा करने के लिए महिलाओं के पास मौजूद उपायों में से एक खुशियों के पल पैदा करना है। ये चीज आमतौर पर ईदों, विशेषकर ईद नौरोज में ज्यादा दिखाई देती है। ईरानी महिलाएं वसंत आने से पहले ही घर में अपनी गतिविधियां शुरू कर देती हैं और वो इस काम में अपने बच्चों और पति को भी लगा लेती हैं। दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि ईरानी महिलाएं अपने पति और अपने बच्चों की मदद से सबसे पहले पूरे घर की सफाई करती हैं और उसके बाद सारी फालतू चीज़ों को घर से बाहर करती हैं। घर से फालतू चीज़ों को हटाने से स्ट्रेस कम होता है और घर में शांति का माहौल ज़्यादा होता है।
अभी बसंत को कुछ दिन बाकी ही रहते हैं कि महिलाएं घर को चमका देती हैं और घर की सेटिंग भी बदल देती हैं, जिसकी वजह से घर साफ सुथरा होने के साथ ही नया नया भी लगने लगता है। घर के डेकोरेशन में परिवर्तन, कमरों में नया रंग, रंग बिरंगी चादरें, ताजे फूल और गुलदस्ते और साथ ही नए नए कपड़े पूरे घर के माहौल को बदल कर रख देते हैं। यहाँ पर इस बात का उल्लेख भी जरूरी है कि इन सब चीजों में ज्यादातर जिम्मेदारियां महिलाओं के कंधे पर ही होती हैं। ईद की तैयारी यहीं पर खत्म नहीं होती। घर की महिलाएं बाजार से जाकर अच्छी अच्छी मिठाइयां और फल इत्यादि भी खरीदती हैं।
यहाँ पर कुछ महिलाएं अपने हस्त उद्योग का प्रदर्शन भी करती हैं और वो अपने हाथों से ही हफ्तसीन दस्तरखान बुनती हैं और उस पर विभिन्न प्रकार की डिजाइनें बनाती हैं। कुछ महिलाएं तो अपने हाथ से ही हफ्तसीन दस्तरखान का प्याला बनाती हैं और उस पर पारंपरिक डिजाइनें बनाती हैं, जबकि कुछ महिलाएं अपने हाथ से ही ईद में पकने वाला गेहूं का विशेष हलवा भी अपने हाथों से बनाती हैं और मोहल्ले और निकटवर्तियों में बांटती हैं। यहाँ पर भी ये बात अहम है कि महिलाएं भी अपनी मेहनत से नौरोज में खुशियां भर देती हैं।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई, जो महिलाओं के महत्वपूर्ण स्थान को समझते और उस पर बल देते हैं, परिवार में महिलाओं की भूमिका के बारे में कहते हैं कि निसंदेह परिवार और घर के प्रबंधक के रूप में माँ के कलात्मक जीवन की भूमिका की खुशियां भरने और आत्मिक शांति और प्रसन्नता बनाने में अनदेखी नहीं की जा सकती।
महिलाओं के लिए आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या जो उन्हें खुशियों से दूर रखती है और अपनी खुशियां बिखेरने का मौका नहीं देती, अवसाद या स्ट्रेस है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि महिलाओं को खुश करने का सबसे अच्छा और सस्ता रास्ता उनके स्ट्रेस को कम करना है। पुरुषों को चाहिए कि वो महिलाओं और बच्चों का भरपूर समर्थन करें, विशेषकर पत्नी से खास लगाव रखना चाहिए ताकि उसके अवसाद और स्ट्रेस को कम करें और उसे शांति और सुख उपहार में दें।
पत्नी से प्यार के दो बोल उसके स्ट्रेस को कम करने में बहुत ही प्रभावी हैं। इमाम रजा अलैहिस्सलाम इस बारे में बहुत ही अहम और रोचक बिंदु की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जब भी पति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तो पत्नी के दिल में ऐसा प्रेम जागता है कि जो उसके दिल से कभी भी बाहर नहीं हो पाता। पति द्वारा जवानी मोहब्बत का प्रदर्शन आग की उस चिंगारी की भांति है जो पत्नी के दिल में भड़क उठती है और उसके अस्तित्व में प्रेम की आग भड़का देती है। पत्नी चूंकि प्रेम और मोहब्बत की खुदा है, तो वह अपना प्रेम अपने पति और बच्चों पर न्योछावर कर देती है।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हुआ, हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। قرآنی قصے
श्रोतागण, साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से की कन्या कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि सूरह नहल की आयत नंबर 83 कब नाजिल हुई थी। स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार करें।
श्रोताओ, पैगम्बर इस्लाम के एक अनुयायी जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं, एक बार हम पैगम्बर इस्लाम की सेवा में बैठे थे। उस समय एक अरबी पैगम्बर इस्लाम की सेवा में हाजिर हुआ। उसके कपड़े फटे पुराने थे, उसकी हालत से ही निर्धनता और परेशानी टपक रही थी। जब उसकी नज़र पैगम्बर इस्लाम पर पड़ी तो उसने कहा, मैं आपके पास आया हूँ, मेरी बच्ची बहुत रो रही है, उसकी माँ इस हालत से बहुत चिंतित व परेशान है। इसी प्रकार उसने कहा कि मैं अपनी एक बहन, दो लड़कियों और अपनी माँ की जान से हाथ धो चुका हूँ। मैं अपनी निर्धनता से बहुत परेशान हूँ, लगता है कि मैं पागल हो जाऊँगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूँ। पैगम्बर इस्लाम ने जब निर्धन अरब की बात सुनी तो वो बहुत रोए। उसके बाद अपने अनुयायियों को संबोधित करके कहा, हे मुसलमानों, महान ईश्वर ने तुम्हारे पास प्रतिदान भेजा है। महान ईश्वर ने महलों को प्रतिदान करार दिया है, हजरत इब्राहिम की भांति स्वर्ग में स्थान करार दिया है, तो तुम में से कौन है जो इस निर्धन की सहायता करेगा? किसी ने पैगम्बर इस्लाम का जवाब नहीं दिया, किंतु हजरत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद के एक कोने में मुस्तहब नमाज पढ़े थे। उन्होंने हाथ से इशारा किया कि निर्धन आदमी उनकी तरफ आए। निर्धन आदमी जैसे ही हजरत अली अलैहिस्सलाम के निकट पहुंचा तो आपने अपना हाथ बढ़ा दिया ताकि निर्धन आदमी आपके हाथ से अंगूठी उतार ले। उसने ऐसा ही किया, यानी हजरत अली अलैहिस्सलाम के हाथ से अंगूठी निकाल ली और उसके बाद पैगम्बर इस्लाम पर दुरूद व सलाम भेजने के बाद कहा, आप वो मौला व आका हैं जिसके जरिए ईश्वर अपने धर्म को पूरी दुनिया में फैला देगा। यही वो वक्त था जब महान ईश्वर के विशेष फरिश्ते हजरत जिब्राइल नाजिल हुए और कहा, सलाम हो आप पर हे मोहम्मद, महान ईश्वर आप पर दुरूद व सलाम भेजता और फरमाता है, तुम्हारा अभिभावक केवल ईश्वर, उसका रसूल और ईमान लाने वाले वे मोमिन हैं जो नमाज पढ़ते हैं और नमाज की हालत में ज़कात देते हैं।
पवित्र कुरान की यह आयत उतरने के बाद पैगंबर इस्लाम अपनी जगह से उठे और फरमाया, हे मुसलमानों, तुम में से किसने नेक कार्य अंजाम दिया है कि अल्लाह ने उसे मोमिनों का अभिभावक करार दिया है? इस पर मुसलमानों ने कहा कि हे ईश्वरी दूत, आपके चचेरे भाई हजरत अली अलैहिस्सलाम के अलावा हम किसी को नहीं जानते जिसने नमाज की हालत में ज़कात दिया और नेक काम किया हो। यह वह वक्त था जब पैगम्बर इस्लाम ने आयते विलायत की तिलावत फरमाई। जब मुसलमानों ने पवित्र कुरान की आयत सुनी तो उन्होंने भी अरब निर्धन व्यक्ति को दान दिया।
दोस्तों, पैगम्बर इस्लाम के जीवन काल का प्रसिद्ध शायर हसन बिन साबित सारे घटनाक्रम को देख रहा था। उसने अविलंब इस घटना को शेरों का रूप दे दिया, जिसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है, हे अबुल हसन, मेरी जान और उस इंसान की जान आप पर कुर्बान हो जो देर सवेर ईमान लाएगा। ये आप हैं जिसने नमाज व रुकू की हालत में ज़कात दी है। हे बेहतरीन रुकू करने वाले, सबकी जाने आप पर कुर्बान हों। महान ईश्वर ने आपके बारे में ये आयत नाजिल की है और ये बात आसमानी किताब में लिख दी गई है।
पवित्र कुरान के सूरह मायदा की 55वीं आयत के नाजिल होने और उसके मुसलमानों तक पहुंचा दिए जाने से मुनाफिकों के चेहरों से रंग उड़ गए और उनके दम घुटने लगे। उनकी नजरों में दुनिया अंधेरी हो गई और उनकी सारी आरजुओं व तमन्नाओं पर पानी फिर गया। کیونکہ پوتر قرآن کی یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی پرشنسا میں نازل ہوئی ہے اور منافقوں کو اس بات میں لیش ماتر بھی سندے نہیں تھا کہ یہ آیت جس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام نے مسجد میں نماز پڑھتے سمے وہ بھی رکو کی حالت میں اپنی انگوٹھی فقیر کو دان میں دے دی۔
منافقین پیغمبر اسلام کا اترادھیکاری بن کر سطح حاصل کرنے کا سوپنا دیکھ رہے تھے، پرنتو جب پوتر قرآن کے سورہ معاہدہ کی 55 آیت نازل ہو گئی تو وہ پہلے سے ادھک پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی پیغمبر اسلام سے سن رکھا تھا کہ جو بھی مکتی سفلتا و کلیان کی ناؤ پر سوار ہونا چاہتا ہے، ایشور کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ میرے بعد حضرت علی علیہ السلام کے نیتتو و مارک درشن کو سویکار کر لے، ان کے دشمنوں کا دشمن رہے اور ان کے معصوم بیٹوں کا انسرن کرے۔ وہ سب میرے اترادھیکاری اور میرے بعد ایشور کی اور سے لوگوں پر حجت و ترک ہیں، وہ لوگوں کو سورگ کی اور بلانے والے ہیں، وہ مجھ سے ہیں، میرا دل ایشور کا دل ہے اور ان کے دشمنوں کا دل شیطان کا دل ہے۔
بہرحال پیغمبر اسلام نے پوتر قرآن کی آیتوں کے آدھار پر ایک بار پھر اس بات کا اعلان کیا کہ حضرت علی علیہ السلام میرے بعد میرے اترادھیکاری ہیں۔ منافقین نے مجبور ہو کر ایک بیٹھک کی اور پوتر قرآن کی اس آیت سے مقابلے کے بارے میں وچار ومرش کیا۔ ان میں سے کچھ نے کہا کہ اس آیت کا انکار کر دیں، جبکہ کچھ دوسروں نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ ہم نے اس آیت کا انکار کر دیا تو ہم ادھرمی ہو جائیں گے اور ہمارے اس کارے کا پرینام کفر ہوگا، اور ودت میں اس آیت کو ماننے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی منافقین نے یہ بھی کہا کہ اس سے بڑا کوئی اپمان نہیں ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کو سویکار کریں۔ وہ سب نراشا کے ساتھ بیٹھک ختم کر کے جانا چاہ رہے تھے کہ ان میں سے ایک نے بڑے کروس سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ کلنک ہے کہ ہم حضرت علی کو امام مانیں اور ان کی ولایت کو سویکار کریں، کم سے کم ہم چپ چاپ رہیں اور ان کے انوسرن کو اسپشٹ نہ کریں۔ یہ وہ وقت تھا جب مہان ایشور نے پوتر قرآن کے سورہ نحل کی 83 آیت نازل کی اور فرمایا، ایشور کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر بھی وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے ادھکانش کافر ہیں۔
اس آیت کی ویاکھیا میں امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے آیا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں، جو لوگ اسے پہچانتے ہیں اور اس کی اپاسنا کرتے ہیں اور جو لوگ اسے نہیں پہچانتے ہیں وہ اس شخص کی بھانتی ہیں جو ایشور کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اس آدھار پر وہ گمراہ ہیں۔ اس کے بعد ابو حمزہ صومالی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ ایشور کی معرفت و پہچان کا کیا ارتھ ہے، تو اس کے جواب میں امام نے فرمایا، ایشور کو ماننا اور اس کے پیغمبر کی بات کی پشٹی کرنا کہ پیغمبر اسلام کے بعد حضرت علی علیہ السلام اور ان کی سنتان ان کے اترادھیکاری ہیں، اور اس کے بعد ایشور کے دشمنوں سے ورکتتا کی گھوشنا کرنا، ایشور کی پہچان کا یہ ارتھ ہے۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے امام سے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جس کے جاننے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ ایمان پورا ہو گیا ہے۔ اس پر امام نے فرمایا، ایشور کے دوستوں سے پریم کرو اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھو، جیسا کہ ایشور نے تم سے کہا کہ ستیہ بولنے والوں میں ہو جاؤ۔ اس پر ابو حمزہ صومالی امام محمد باقر علیہ السلام سے کہتے ہیں، کون لوگ ایشور کے دوست اور دشمن ہیں؟ اس کے جواب میں امام نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی بن حسین، اور اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے انتیم امام تک گنواتے اور کہتے ہیں، جو ویکتی بھی انہیں دوست رکھے گا اس نے ایشور کے دوستوں سے دوستی کی اور سچے لوگوں میں سے ہو گیا۔
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, पर कार्यक्रम की समाप्ति से पहले हम आप लोगों को यह कहना चाहते हैं कि पवित्र कुरान के सूरे मायदा की 55वीं आयत के अलावा इसी सूरे की 3री आयत में भी महान ईश्वर ने इस्लाम धर्म के परिपूर्ण होने के बारे में कहा है, और साथ ही हजरत अली अलैहिस्सलाम की इमामत व खिलाफत की ओर संकेत किया है। इसी प्रकार पवित्र कुरान के सूरे मायदा की 67वीं आयत में हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत की ओर संकेत किया गया है। इस आयत को आयते बल्लिक के नाम से जाना जाता है। उसकी घटना कुछ इस प्रकार है। पैगंबर इस्लाम अपने जीवन का अंतिम हज करके वापस आ रहे थे। उनके साथ हजारों हाजी थे। जब पैगंबर इस्लाम हज करके मक्का से मदीना वापस आ रहे थे तो रास्ते में गदीरे खूम नामक स्थान पर महान ईश्वर के विशेष फरिश्ते हजरत जिब्राइल यह आयत लेकर नाजिल हुए, जिसमें महान ईश्वर पैगंबर इस्लाम को आदेश देता है कि हे पैगंबर, उस संदेश को पहुंचा दीजिए तो तुम्हारे पालनहार की ओर से नाजिल किया जा चुका है, और अगर आपने यह कार्य अंजाम नहीं दिया तो पैगंबरी का कोई कार्य ही अंजाम नहीं दिया। इस आयत के नाजिल होने के बाद पैगंबर इस्लाम ने 100,000 से अधिक हाजियों के मध्य ऐलान किया कि जिस जिस का मैं मौला और अभिभावक हूँ उस उसके अली मौला व अभिभावक हैं। उसके बाद पैगंबर इस्लाम ने हाजियों से कहा कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वे उन लोगों को बताएं जो यहाँ नहीं हैं। उसके बाद पैगंबर इस्लाम ने समस्त हाजियों को आदेश दिया कि वे हजरत अली अलैहिस्सलाम को अमीरुल मोमिनीन कहकर मुबारकबाद दें। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे थे। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.ir/ib.ir, और हमारी वेबसाइट का पता है parsradio.com/hi। तो श्रोता, इसी के साथ हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अगली सभा तक अहमद अब्बास और साथियों को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज़। Thank you.